लोग कहते हैं शास्त्र ने सुख और दुख का डेफिनेशन किया, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि हमें सुख मिले, लेकिन सुख क्यों नहीं मिलता है, दुख ही क्यों आता है? इसलिए कहा गया, शास्त्र ने तो कह दिया सर्वम पर बसम दुखम और सर्वम आत्म बसम सुखम, बस दो बात, कितना शॉर्ट है, कि पर बस हो जाना, पर बस हो जाना उसका नाम है दुख, किसी के अधीन बन जाना, किसी के बस में रहना, ये क्या है, इसका नाम दुख। कोई अधीन में रहना नहीं चाहता, किसी के बस में रहना नहीं चाहता, सर्वम परबसम दुखम और सर्वम आत्मबसम सुखम। सुख किसे कहा जाता है तो कहता है शास्त्र कि अपने बस में रहना, अपने अधीन रहना वह सुख है और दूसरे के अधीन रहना ये दुख है। तो कैसे होगा, लोग किसी के अधीन, किसी के बस में है नहीं रहना चाहते। तो यहां पर कहने का तात्पर्य, हम बाहर जगत को भी देखते हैं एक दूसरे के अधीन में, ये कहते हैं कि उसमें वह सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है, वह दुख की ही प्रतीति करता है। लेकिन इस अंतर जगत में सुख दुख ये मन के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है, इसलिए मन को पकड़ो। इंद्रियारी परान्याहु, विषयों से परे इंद्रिया है, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे वह तत्व है। इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रिय ब्रह्मण मन तस्तु पराबुद्धि, ये बुद्धि पर तत्व सा। अब ये क्रम ये है, विषय से परे इंद्रियां है, इंद्रियों से परे मन है, इंद्रियों का इंद्रिया नाम मनोनाथ, मनोनाथस्तु मारुत, इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी मारुत का मतलब प्राण। इंद्रिया नाम मनोनाथ, मनोनाथस्तु मारुत और उससे परे वह बुद्धि तत्व है और बुद्धि तत्व से परे वह चेतन तत्व आत्मा है। ये भी गीता का ही उदाहरण, कोटेशन श्लोक गीता का ही है। अब विचार करो, जब मन के धर्म सुख दुख है तो हम किसके बस में है, बोलो, मन के बस में। तो मन इसका, मन का ऊपरी भी कोई होगा ना, मन का ऊपरी कौन है,
प्राण,
बुद्धि, प्राण, प्राण के बाद बुद्धि है। यह कहने का तात्पर्य, अगर हमने मन का धर्म है सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म धर्म चित्तम विचार्यम उह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च, ये सब मन के है, वो तर्क करेगा, वितर्क करेगा, संकल्प करेगा, विकल्प करेगा, लेकिन निश्चय करेगा नहीं। निश्चय कौन करेगा, बुद्धि, बराबर। लेकिन अगर बुद्धि ही जो वह तत्व है, बुद्धि तत्व ने मन के बस में हो गई, बुद्धि तत्व किसके बस में हो गई, तो फिर परबसम हो गया ना। आज जिसके द्वारा हमें सब कुछ चलना है, बुद्धि तत्व विवेक वाला है, वह निश्चय तत्व है, वह ज्ञान तत्व है, वह सब कुछ बुद्धि तत्व ही है। बुद्धि के द्वारा हम उस तत्व को जान सकते हैं और जगत के व्यवहार को भी कर सकते हैं। इसलिए लोग कहते हैं बहुत बड़ा बुद्धिमान है, मनोमान नहीं कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? बुद्धिमान। बुद्धि की ही प्रशंसा होगी। और बुद्धिमान अगर मन से दब गया और मन के द्वारा मनस्वी राज हो गया तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तव में मन तो कहीं भी पटकेगा। कल मैंने मन के स्वभाव की बात किया, कई प्रकारों की बात किया, ये मन तो तुम्हें उठा पटक करेगा। और मन ही हमारे सामने सुख और दुख की अनुभूति कराता है या राग द्वेष कराता है, जो भी कराता है, लेकिन इसको बचाने के लिए इसका ऊपरी जो बुद्धि तत्व है। तो अगर बुद्धि तत्व तुम्हारा मन के अधीन बन गया तो तुम दुखी बन गए। इसी का नाम है सर्वम परवशम दुखम। क्या है इसका नाम? परवश हो गए तुम, मन के वश में हो गए। मन का नियंत्रण होना चाहिए और नियंत्रण करने वाला कौन सा तत्व है? वो बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि क्या है? अंदर सारथी है, ड्राइवर है, तो मोटर को कंट्रोल कौन करेगा? बोलो, ड्राइवर करेगा? सारथी रूप बुद्धि है, बुद्धि के हाथ में वह लगाम है मन रूपी और घोड़े से जुड़ा है। अगर बुद्धि ने भांगा लिया, कोई नशा कर लिया, बुद्धि काम क्यों नहीं करेगी? बुद्धि लोपनीय द्रव्यम मदकारी तदुच्यते तमो गुण प्रधानम च यथा मद्यम सुराधिकम सुराधिकम। इस देश में तो बहुत है। अगर बुद्धि पान कर लिया तो लुम्पट यह द्रव्यम, उस द्रव्य के द्वारा उसके प्रभाव से तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। जिसे बुद्धि को काम करना है, ड्राइवर का काम करना है, सारथी का काम करना है, निश्चय का काम करना है, धारणा का काम करना है, ये सब फैल गए। अब मन के अधीन वह बन गई, क्योंकि वह बुद्धि जो है वह लुम्पत बन गई है। बुद्धि तुम्हारी वह मलिन बन गई है, क्योंकि किसी के संसर्ग के द्वारा। इसलिए यहां पर कहा कि बुद्धि के तीन भाग हैं। बुद्धि के तीन, धी धृति स्मृति। एक का नाम है धी। धी का मतलब है जो निश्चय करने वाली है, निर्णय शक्ति, उसका नाम है निर्णय शक्ति। दूसरी धृति, धृति का मतलब धारणा शक्ति। धृति का नाम धैर्य, धारणा शक्ति। और तीसरी है स्मृति। ये तीनों बुद्धि के ही भाग हैं। स्मृति, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम स्मरणात् स्मृति रुच्यते, जो मेमोरी पावर है, वो भी बुद्धि का ही भाग है। तो किसी की मेमोरी खत्म हो गई तो उसने कहा ये डल हो गया बुद्धि। इसलिए तीन में से शास्त्र कहता है कि धी धृति स्मृति विभ्रंसा कर्मया कुरुते नर प्रज्ञापराधतम गेयम सर्वदोष प्रकोपणम। अगर तीन में से एक की भी कमी हो जाएगी तो तुम्हारे शरीर में दोष कुपित हो जाएगा। और दोष कुपित होने के बाद हमारा जो कार्य होना था वो नहीं होगा, हम कदाच दुखी भी हो जाएंगे, क्योंकि बर्बाद हो गए, मनस्वी राज हो गया। क्रम तो ये है कि विषय के ऊपर जो इंद्रिय है, इंद्रियों का यह मन के बस में इंद्रिय होगी और मन का नियंत्रण बुद्धि के हाथ में होगा और बुद्धि उस तत्व से जुड़ी हुई होगी जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, वह तत्व से जुड़ी होगी। एक के बाद एक अगर यह नियम से होगा तब हम क्या कहे जाएंगे, आत्म बसम सुखम, ये आत्म बसम हो जाएगा। आत्मबस का मतलब क्रम है ना, ये अपना क्रम, अपना क्रम से अगर होगा, हम अपने बस में है, मन हमारे नियंत्रण में है, बुद्धि भी हमारी बराबर है, वह चेतन तत्व के आधार पर ये सब है और मन के अधीन वह इंद्रियां है, इंद्रियों के अधीन वो विषय है। अगर यह क्रम से रहेगा तो हमें सुख की अनुभूति होगी, हमें आनंद मिलेगा, हमें खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, बराबर है। लेकिन अगर व्यतिक्रम हो जाएगा, व्यतिक्रम के द्वारा, इसीलिए अर्जुन ने कह दिया चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये, कैसे निग्रह करना, कैसे नियंत्रित करना। भगवान ने कहा अभ्यास न तो कौन थे या वैराग्य न चित रही थे, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य एक का नाम है राग, एक का नाम है अनुराग और एक का नाम है वैराग्य, ये तीन चलते, राग